Hare Krishna, it is our very great fortune to listen His Grace Rukmini Krishnaji on the all auspicious day of Balaram Jayanti on 5th of August 2009. Hare Krishna.
हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही पावन अवसर है बलराम जयंती, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बलराम जी का आज आविर्भाव हुआ था, अवतार हुआ था। बलराम जी को लोग परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जानते हैं। श्री कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, श्री प्रभुपाद बताते हैं। और स्वयं भगवान का आज प्राकट्य हो रहा है, लेकिन उनकी लीलाओं को सुनने के लिए कितने गिने चुने लोग सामने बैठे हैं, कितने कम लोगों को मालूम है कि आज बलराम जयंती है। तो लोगों का दुर्भाग्य है। आज लोग एक उत्सव तो मना रहे हैं, उसको लोग किस नाम से जानते हैं? रक्षाबंधन के नाम से। और उसी की तैयारियों में और उसी के मनाने में सब लोग व्यस्त थे। किसी को कुछ रंच मात्र में संदेशा नहीं होगा कि आज परम पुरुषोत्तम भगवान का जन्म उत्सव है। तो कोई कह सकता नहीं मालूम, तो नहीं मालूम क्या फर्क पड़ता है? ऐसे बहुत फर्क पड़ता है। आज हम इस चर्चा करेंगे कि बलराम जयंती का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज सुबह ही हमारे वरिष्ठ भक्त इस ग्रेस भक्ति विनोद प्रभु बहुत सुंदर बात बता रहे थे कि उत्सव शब्द का अर्थ क्या होता है। उत्सव शब्द दो शब्दों से बना है, उत और सव। सव का मतलब होता है शव, यानी कि डेड बॉडी, और उत्सव का अर्थ होता है लिविंग बॉडी। सव का मतलब मृत शरीर और उत्सव का मतलब जागृत जीवित शरीर। यानी कि अगर हमारे जीवन में उत्सव नहीं है तो हम मृत तुल्य हैं। तो उत्सवों का इतना महत्व है, इसलिए भगवान के धाम का एक नाम है अखंड उत्सव। यानी कि वहां पर उत्सव नॉन स्टॉप, हर पल एक उत्सव है, हर क्षण एक उत्सव है। तो ये आध्यात्मिक जगत में ही संभव है कि वहां पर हर क्षण उत्सव मनाया जाए। कुछ लोग कह सकते हैं, नहीं नहीं आज हमने बहुत सुंदर रक्षाबंधन का उत्सव मनाया है, देखिए हमारे कलाइयों पर राखी बांधी हुई है, हमारी बहुत प्रिय बहन आए भाई आए, हमने आपस में मिलजुल कर अच्छी मिठाइयां खाई और राखी बांधी और बहुत कुछ हमने आनंद पाया आपस में। हाँ, कुछ आनंद की अनुभूति होती है, कुछ खुशी होती है, कुछ सुख मिलता है, लेकिन सच्चे हृदय से बताइए, किसी को लगता है ये राखी बनवा कर कि हाँ मेरी रक्षा हो जाएगी, या कोई मेरी रक्षा करने वाला वास्तव में कोई है? तो हम वास्तव में अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। तो उत्सव तभी संभव है जब उसके केंद्र में श्री कृष्ण हो। उत्सव आध्यात्मिकता में ही संभव है। एक आध्यात्मिक जगत है जो इस भौतिक जगत से परे है, लेकिन सामान्यतः लोग आध्यात्मिकता को कल्पना समझते हैं। जब हम बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता, लोग बोलते हैं आध्यात्मिकता हाँ कुछ ऐसी कोई बातें हैं, लेकिन ये एक साइंस है, ये एक विज्ञान है। आध्यात्मिक जगत निश्चित रूप से है जो कि इस भौतिक जगत से परे है, और वहां पर हमेशा ही उत्सव मनाया जाता है, हमेशा। कथा गानम नात्यम गमन अपनी वंशी प्रिय सखी। आध्यात्मिक जगत में ऐसा वातावरण होता है कि अगर आप बात करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि वो गा रहा है, अगर आप चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप नाच रहे हैं। यहां ऐसा संभव है या ऐसा संभव नहीं है? तो असली उत्सव आध्यात्मिक जगत में मनाए जाते हैं, और इस संसार में भी अगर हम उत्सव मनाना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण के साथ ही उत्सव मनाना चाहिए। तो अधिकांशतः लोग आज रक्षाबंधन का उत्सव मना रहे थे, लेकिन वास्तविक रक्षा तो हमारे कृष्ण और बलराम ही करने वाले हैं। कृष्ण और बलराम के अगर संरक्षण में रहेंगे तो हमेशा रक्षित रहेंगे। कथा आती है कि जगन्नाथपुरी में एक राजा थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम देव। वो भगवान जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। आप में से अधिकांश लोग जानते ही होंगे कि भगवान जगन्नाथ और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो भगवान जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे और जगन्नाथपुरी में हर वर्ष बड़ी धूमधाम से रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। तो उस वहां एक पद्धति है कि उत्सव से पहले, रथ यात्रा शुरू होने से पहले, जो राजा होते हैं वो जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू मारते हैं। तो पुरुषोत्तम देव जी बड़े प्रेम से भगवान के रथ के आगे झाड़ू लगाते थे और उनको बहुत प्रेम था जगन्नाथ जी से। तो एक बारी क्या हुआ कि दक्षिण भारत में कांची के एक राजा थे, तो उन्होंने ऐलान किया कि उनकी बेटी पद्मावती का स्वयंवर है। तो राजा पुरुषोत्तम जी वहां पर गए और फिर राजा उनकी बेटी, राजा कांची के राजा की बेटी ने, पद्मावती ने इनको चुन भी लिया और लगभग विवाह निश्चित हो गया। उसके बाद ये वापस आ गए तो कांची के राजा ने सोचा कि मेरी पुत्री का विवाह पुरुषोत्तम देव से होना है, तो एक बार अपने मंत्री को भेज के देखता हूं कि इनकी क्या हालत है, कैसे ये रहते हैं। तो जब मंत्री वहां पे आए तो उस समय भी रथ यात्रा का उत्सव चल रहा था। तो मंत्री जब आए तो राजा ने उनसे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि आप थोड़ी देर रुक जाइए और जगन्नाथ जी के उत्सव में भाग लेके जाइए। तो मंत्री रुक गए। तो जब रथ यात्रा का दिन आया तो कांची, जो दक्षिण भारत में है, वहां से जो मंत्री आए हुए थे, उन्होंने क्या देखा कि उड़ीसा के राजा रथ के आगे झाड़ू लगा रहे हैं। बोले, चंडाल का काम है, तो भंगी का काम है, हमारी राजकुमारी का विवाह एक भंगी के साथ होगा, हमारे राजा ने तो कभी झाड़ू पकड़ा भी नहीं और ये झाड़ू लगा रहे हैं, ये कौन से राजा है। तो भाई निराश हो गए और जाके उन्होंने राजा को रिपोर्ट दी कि बहुत बड़ा धोखा होने वाला था हमारे साथ, हम टाइम से बच गए, वो तो भंगी है, झाड़ू लगाता है सड़क पे। तो राजा ने बोला, ये तो बहुत गलत बात है, बोले हम इनके साथ विवाह नहीं करेंगे, विवाह तोड़ दिया। और जब ये बात पुरुषोत्तम देव को मालूम चली तो बड़े दुखी हुए कि भगवान के सामने झाड़ू लगा रहा हूं, तो मैं सेवा कर रहा हूं और मेरा इतना निरादर कर दिया। तो राजा पुरुषोत्तम ने सोचा, ठीक है अब मैं उनके ऊपर आक्रमण करूंगा, तो उन्होंने युद्ध घोषणा कर दिया। अब जो कांची के राजा थे वो गणेश के भक्त थे, गणेश देव की पूजा करते थे। उन्होंने बोला, ठीक है युद्ध हम करेंगे लेकिन एक शर्त है, आप हो जगन्नाथ और बलदेव जी के भक्त और हम हैं गणेश जी के भक्त, तो लड़ाई हमारे मिली, लड़ाई इन सब में है, तो अगर आप हार गए तो आप अपने जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी को हमारे को समर्पित कर देंगे और अपने मंदिर में हम गणेश जी को सामने रखेंगे, जगन्नाथ जी को पीछे रखेंगे, और अगर हम हार गए तो अपने गणेश जी हम आपको दे देंगे, आप इसको जहां मर्जी रखिए। तो राजा पुरुषोत्तम देव को पूरा विश्वास था, बोले ठीक है अब युद्ध शुरू करते हैं। अब युद्ध जब शुरू हुआ तो युद्ध के प्रारंभ में ही कांची के राजा ने पुरुषोत्तम देव की सेना को बहुत बुरे ढंग से हरा दिया और उनके जो कैंप में आग भी लग गई, सारे के सारे सैनिक मारे गए और लगभग उनकी हार निश्चित हो गई। अब ये जानकर पुरुषोत्तम देव जी बड़े चिंतित हो गए। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, जब हम भक्ति करते हैं हमारे बिजनेस में लॉस हो जाता है, कई बार बेचारा कोई विद्यार्थी भक्ति शुरू करता है उसके जो पहले नंबर आते हैं उससे कम नंबर आ जाते हैं, कई लोग भक्ति शुरू करते हैं कभी कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। पिछली जन्माष्टमी में एक भक्त मुझे मिले थे, वो कह रहे थे कि आज मैंने निजला रखा और मैंने पूरा दिन 64 माला की, बहुत अच्छी बात है, मैं बात तो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। कहता एक बात कहूं गुरु जी, क्या कहता, विश्वास उठ गया भगवान से। मैंने, अरे 64 माला करने के बाद आपका विश्वास उठ गया, ऐसा क्यों? कहता आप खुद ही बताइए, पूरा दिन निर्जला रहा, 64 माला की, रात्रि 12 बजे व्रत तोड़ने का समय आया, थोड़ा सा पानी पिया, पानी पीते पेट में इतना दर्द हुआ मेरे, पूरी रात सो नहीं सका, मैंने क्या लाभ हुआ इतना सुख छेने का। तो उनका भगवान से विश्वास कम हो गया। तो हमारे पास थोड़ी सी समस्या आती है, हम सोचते हैं इतनी भक्ति कर रहे हैं और इसका परिणाम ये मिल रहा है। राजा पुरुषोत्तम ने सोचा कि मैंने रथ के आगे झाड़ू लगाया और इतनी सालों से मैं जगन्नाथ जी का अनन्य भक्त हूं और अब ऐसी चेतावनी मुझे दी गई, ऐसी चुनौती दी गई कि अगर मैं हार गया तो जगन्नाथ जी को गणेश जी के पीछे रखा जाएगा और मैं हार रहा हूं, क्या होगा, कैसे लोग भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे। तो बड़ी चिंतित होकर वो सो गए। तभी उनके स्वप्न में आते हैं स्वयं जगन्नाथ जी और बलदेव जी, कहते हैं चिंता मत करो, अब देखो कल क्या होगा, हम आएंगे तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए, तुम्हारी जीत निश्चित है। तो राजा पुरुषोत्तम देव उठे, बड़े उत्साह में थे, तो बोला अपनी सेना को, थोड़ी बहुत सेना बची, चलो जो भी थोड़ी बहुत सेना युद्ध लड़ेंगे। तो चलना शुरू हो गए और यहां पे जगन्नाथ जी और बलदेव जी भी तैयार होकर सैनिक होकर चल पड़े युद्ध लड़ने के लिए। भगवान जगन्नाथ जी बैठे थे काले घोड़े पर और बलभद्र जी बैठे थे सफेद घोड़े पर और चल रहे हैं पूरी से, यानी कि उत्तरी पूर्वी भारत से दक्षिणी भारत की ओर। जब रास्ते में जा रहे हैं तो बहुत गर्मी का मौसम था, तो बीच में उनको एक ग्वाली दिखाई दी, बूढ़ी सी महिला थी और उसके पास कुछ मटके थे, उसमें खूब लस्सी पड़ी थी छाछ। तो जगन्नाथ और बलराम जी रुके, बोले कि ये माता जी क्या है, बोली छाछ है, खूब पिलाओ। एक एक करके सारे के सारे घड़े पी गए और फिर चलने लगे। तो बूढ़ी माता बेचारी गरीब भरी, क्या पैसे, कहे पैसा तो है नहीं, बोले पूरे परिवार का पालन करना है, मुझे कुछ तो धन दे के जाओ। बोले धन, देखो धन तो हमारे पास है नहीं, तो ऐसा करो, उन्होंने अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी, हीरे की अंगूठी थी, इसको रख लो, पीछे हमारे राजा आ रहे हैं उनको ये अंगूठी दिखाना, वो आपको सारा धन दे देंगे, चिंता मत करो। वो बेचारी रोती रही, क्या है इस अंगूठी का मैं करूंगी, तो रो रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी गर्मी में, काफी देर खड़ी रही। फिर उसको दूर से कुछ धूल उड़ती हुई दिखाई दी, कुछ घोड़े दिखाई दिए, उसको लगा हाँ शायद राजा आ गए। तो राजा को उसने रोका और बोला रुको रुको, बोलो देखिए आपके कुछ सैनिक आए थे, एक काले घोड़े पे था एक सफेद घोड़े पे था, सारी की सारी मेरी छाछ पी गए और जब मैंने उनसे पैसा मांगा तो ये अंगूठी पकड़ा दी। तो राजा ने देखा ध्यान से उस अंगूठी को, वो तो अंगूठी साक्षात भगवान जगन्नाथ जी की थी। तो राजा कांप उठा, बोले इसका मतलब जो मैंने स्वप्न देखा था वो सच्चा था, स्वयं भगवान जगन्नाथ और बलराम जी मेरे से पहले जा चुके लड़ने के लिए। तो बोले नीचे उतरे और उस बूढ़ी महिला के पांव पड़ गए, बोले क्या नाम है तुम्हारा, बोली मेरा नाम मनिका है। बोले तुम्हें कितना धन चाहिए, कहती बस मेरे धन, गरीब परिवार है। बोले धन नहीं, कितने गांव चाहिए, सारे गांव ले लो, और ये गांव है जो ये जो जगह है ये नया गांव बनेगा, इस गांव का नाम होगा मनिका पाटन, अभी भी उड़ीसा में वो गांव है। तो अब तो राजा पुरुषोत्तम देव जी ने अपने गले के हार भी दे दिए, खूब धन दिया, गांव भी उसके नाम कर दिए और आगे चल पड़े। तो उनके जाने से पहले ही दो ही सैनिक थे केवल, कौन कौन, कौन कौन सैनिक थे, जगन्नाथ जी और बलराम जी, बलराम जी की जय। तो कांची के राजा ने देखा क्या हो रहा है, दो सैनिकों ने पूरी के पूरी सेना की छुट्टी कर दी और कांची के राजा पूरे ढंग से हार गए। तो यहां इस कथा से मालूम चलता है कि कैसे बलराम जी और कृष्ण जी हमारी रक्षा करते हैं। तो अगर हमने अपने आप को बांधना ही है, हम किसी से अपने संबंधियों से अपने आप को क्यों बांधते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें हमारी रक्षा हो जाएगी। लेकिन हमें अपना संबंध बांधना चाहिए बलराम जी से, श्री कृष्ण से, तब हमारी असली रक्षा होगी। झूठे ढकोसलों में हम रहते हैं, झूठे आश्वासनों में हम रहते हैं कि शायद इससे मेरी रक्षा हो जाए, हमें हर बारी धोखा मिलता है लेकिन फिर भी हम सीखते नहीं हैं। भगवान बलराम जी श्री कृष्ण के पहले विस्तार हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने आप में पूर्ण है, आत्मा राम है, लेकिन अपनी लीलाओं के लिए वो अपने विस्तार करते हैं। भगवान के असंख्य अवतार हैं, अपनी लीलाओं का आस्वादन करने के लिए और अपने भक्तों को अपने लीलाओं का आस्वादन करने के लिए वो अपना विस्तार करते हैं। तो उनके जो पहले विस्तार हैं वो बलराम जी कहलाते हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी में कोई अंतर नहीं है, केवल एक ही अंतर है, श्री कृष्ण हैं श्याम वर्ण के और बलराम जी हैं श्वेत वर्ण के। लेकिन जो शास्त्रों की उक्ति है चैतन्य चरितमृत में क्या कहा गया है, एकला एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भ्रत्य, कि परमेश्वर तो केवल कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश जी और यहां तक कि नारायण भी और यहां तक कि बलराम जी भी श्री कृष्ण के ही सेवक हैं। श्री कृष्ण सेवे भगवान है और बलराम जी सेवक भगवान है। बलराम जी श्री कृष्ण की हमेशा सेवा में संलग्न रहते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि बलराम जी श्री कृष्ण की पांच तरीके से सेवा करते हैं। ये पूरी जो भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि है इसका पूरा कार्य बलराम जी संभालते हैं। और इस कार्य को करने के लिए श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए वो पांच रूप धारण करते हैं। सबसे पहला है महासंकर्षण, फिर महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और शेष। तो महासंकर्षण, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में वो इस सृष्टि का कार्य करते हैं और शेष के रूप में वो भगवान की व्यक्तिगत रूप से सेवा करते हैं। शेष का मतलब अनंत, यानी कि अनंत सेवाएं करते हैं वो भगवान की। कैसे हम देखते हैं चित्रों में कि विष्णु जी शेष नाग पर लेटे हुए हैं, तो ये शेष बलराम जी हैं। यही शेष धाम के रूप में अपना विस्तार करते हैं, जो भगवान के धाम है जैसे वृंदावन धाम, ये भी शेष का ही विस्तार है। भगवान की पादुकाएं, जो हम जो भी कृष्ण की सेवा में हम सामग्री प्रयोग करते हैं वो बलराम जी का ही विस्तार है। हम लोग मृदंग बजाते हैं, करताल बजाते हैं, ये सब बलराम जी का ही विस्तार है। इसीलिए इन सब पैराफेरेनालिया का, इस सारी सामग्री का हमें बहुत आदर करना चाहिए। कई बार हम इन सामग्री का आदर नहीं करते हैं, हमें लगता है ये ढोलक है, बजाने वाली ढोलक है, कैसे भी रख दो, नहीं ये मृदंग है, ये स्वयं बलराम जी हैं, करताल स्वयं बलराम जी हैं, तो इनकी हमें इतनी आदर करनी है जितना हम भगवान श्री कृष्ण का आदर करते हैं। तो इस ढंग से बलराम जी हमेशा श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते हैं। बलराम जी का श्री कृष्ण के साथ पांचों रसों में संबंध है। हर जीव का कृष्ण के साथ किसी न किसी रस में संबंध होता है। ये रस कौन कौन से होते हैं? शांत रस, दास्य रस, साखे रस, वात्सल्य और माधुर्य। तो बलराम जी का पांचों ही रसों में श्री कृष्ण के साथ संबंध है। शांत रस में वो भगवान के धाम बन जाते हैं, भगवान की पादुकाएं बन जाते हैं, भगवान की शैया बन जाते हैं। और साखे रस जो भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम जी का है, उसमें दास्य रस भी है और वात्सल्य रस भी है। जैसे कई चित्रों में आपने देखा होगा कि कृष्ण और बलराम भ्रमण करने जाते हैं गायों को लेकर, और फिर बीच में वन में वो विश्राम करते हैं। तो कई बार देखते हैं बलराम जी विश्राम कर रहे हैं और श्री कृष्ण उनके पांवों को दबा रहे हैं। तो कई बार श्री कृष्ण और बलराम में कुश्ती होती है और श्री कृष्ण कभी कभी हार जाते हैं, कभी कभी बलराम जी हार जाते हैं। तो बृहद भागवत में अपने वर्णन आता है कि बलराम जी का एक नाम है दाऊ जी। दाऊ जी का अर्थ है कि कृष्ण के बड़े भाई, जो उनका ख्याल रखे, उनकी रक्षा करें। तो गोवर्धन लीला जब हुई थी तो श्री कृष्ण की आयु 7 वर्ष की थी, और गोवर्धन लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने काफी असुरों का वध किया, अरिष्टासुर का वध किया, शंखचूड़ का वध किया। तो बलराम जी को ऐसा लगा कि बड़े दिन हो गए मैंने किसी असुर का वध ही नहीं किया, मेरा कर्तव्य अपने छोटे भाई की काना की रक्षा करना, ये खुद ही मारता रहता है असुरों को, तो मुझे मौका ही नहीं मिला किसी को असुर को मारने का। तो एक बार वो काना के पास, कृष्ण के पास गए, बोले ऐसा करो काना अपनी बंसुरी और मोरपंख मुझे दे दो। तो छोटे भाई थे, मना कैसे करते, कहते ले लो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना मोरपंख भी दे दिया और अपनी बंसुरी भी दे दी। बोले ठीक है, आज मैं श्री कृष्ण बन गया। और बड़े आराम से दोनों गले मिले, बोले ठीक है, जैसे कहते ना ऑल द बेस्ट, ठीक है बन के देखो कृष्ण, मालूम चलेगा क्या होता है। तो श्री कृष्ण बोला ठीक है जाओ कृष्ण बनो। तो बोले बलराम जी बड़े खुश थे, उन्होंने मोरपंख लगाया, भगवान की बंसी बजाते हुए निकल पड़े। उधर अब उनको क्या, मथुरा में कंस बहुत चिंतित था कि अब कृष्ण कभी मेरा वध कर सकता है। कई राक्षसों को भेज चुका था और कृष्ण उनको मार देते थे। अब उन्होंने बुलाया केसी राक्षस को। केसी असुर जो था वो घोड़े के रूप में आया था, तो केसी असुर को बुलाया कि जाओ और उस बालक को मार के आओ जिसका नाम कृष्ण है। बोले ठीक है मार दूंगा, लेकिन उसको पहचानूंगा कैसे? कोई भक्त होगा वो तो भगवान को पहचान जाएगा, एक असुर कैसे भगवान को पहचानेगा? तो मैं कैसे पहचानूंगा, किसका वध करना मुझे? तो कंस ने कहा ये बात तो बड़ा है असुर, लेकिन इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। तो कृष्ण ने भी सुन रखा था, कंस ने भी सुन रखा था, हाँ ऐसा सुना है मैंने कि कृष्ण मोरपंख लगाते हैं और बंसरी बजाते हैं। बोले ठीक है हो जाएगा काम, जितने भी ग्वाल वाले देखूंगा किसने मोरपंख लगाया है, बंसरी बजा रहे। तो वो बहुत ही भयंकर वो घोड़ा बन के आया केसी राक्षस, और वृंदावन में आया गोकुल में, और भागते हुए आया, देखा कौन सा है, तो बलराम जी खड़े थे, बड़े आराम से बंसरी बजा रहे थे, मोरपंख लगाया हुआ था। जोर से आए और बड़ी जोर से टांगों से उन्होंने बलराम जी के
वक्ष स्थल पर आक्रमण किया और इतनी जोर से आक्रमण किया बलराम जी पता नहीं कहां दूर जाके पटक गए, बिल्कुल चिपटी पिटी गुम हो गए। और जब उठे तो बोले क्या हो गया, बोले नहीं बनना मुझे कृष्ण। और रोते हुए बेचारे वापस गए रोहिणी माता के पास, मैं भूख लगी मुझे खाना पीला खिलाओ, और भगवान को मंत्री वापस कर दी और मोरपंख वापस कर दिया। तो ये लीलाएं हैं, यानी कि कई बारी भगवान बलराम जी श्री कृष्ण की रक्षा करने के लिए वात्सल्य भाव दिखाते हैं, लेकिन ये लीला है। हमें ये नहीं सोचता कि इसमें श्री कृष्ण बलराम जी कमजोर पड़ गए। एक बार प्रभुपाद जी के पास उनके शिष्य आए, बोले कि बलराम जी का अर्थ है बल, तो आप ये बताइए कि श्री कृष्ण ज्यादा बलवान है कि बलराम जी ज्यादा बलवान है। तो प्रभुपाद ने बोला आप बताओ। तो कुछ शिष्य कहने लगे बलराम जी ज्यादा बलवान है, कुछ शिष्य कहने नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, श्री कृष्ण से ज्यादा बलवान कौन हो सकता है, तो क्या कहना आपका कौन ज्यादा बलवान है। घबराइए मत, कोई अपराध नहीं लगेगा इसमें, भगवान के सामने चर्चा कर रहे हैं, पीछे निंदा नहीं कर रहे। बताइए कितने लोग कहते हैं कृष्ण ज्यादा बलवान है, और कहते हैं बोलते हैं कि आज बलराम जयंती बलराम जी ज्यादा बलवान है, हैं? कितने लोग बोलते हैं दोनों इक्वल हैं भाई। तो दोनों शिष्य बोल रहे थे, एक ग्रुप बोल रहा था कि बलराम जी ज्यादा बलवान है, एक ग्रुप बोल रहे थे कृष्ण ज्यादा बलराम है। तो प्रभुपाद ने बोला जाओ देख के आओ उस चित्र में जो वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर है, उस चित्र को ध्यान से देखो उतना उत्तर मिल जाएगा। तो उस चित्र में क्या देखते हैं हम, श्री कृष्ण बलराम जी दोनों खड़े हैं। बलराम जी कैसे खड़े हैं, किसका सहारा ले रहे हैं? तो उन्होंने बोले बलराम जी को भी श्री कृष्ण के सहारे की आवश्यकता है। तो ये लीला है, वास्तव में दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो बलराम जी हैं वो श्री कृष्ण के वैभव प्रकाश हैं। सनातन शिक्षा में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि भगवान के तरह तरह के विस्तार होते हैं, एक अलग विषय है, लेकिन पहले विस्तार इमीडिएट एक्सपेंशन श्री कृष्ण के वो बलराम जी हैं। तो बहुत मधुर मधुर और सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। बलराम जी में इतनी शक्ति है, जब अपने माता पिता देवकी वसुदेव की रक्षा करने के लिए ये मथुरा में गए कंस के वध के लिए, तो छोटे छोटे से बालक थे श्री कृष्ण और बलराम। बताया जाता है गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि श्री कृष्ण कितने सुंदर थे, कितने कोमल थे, वैसे ही कोमल और सुंदर बलराम जी थे। जब हम अपने घरों में दूध को उबालते हैं और दूध के ऊपर जो झाग उत्पन्न हो जाती है, उस झाग को हम हाथ से पकड़ सकते हैं? पकड़ेंगे तो हाथ में नहीं आएगी, इतने कोमल है श्री कृष्ण, ऐसे कोमल, इतने सुंदर सुंदर उनके अंग, और वैसे ही श्री कृष्ण के साथ बलराम जी भी इतने कोमल हैं। लेकिन जब ये लोग युद्ध करने आए और जहां चामर और मुष्टिक जैसे बड़े बड़े पहलवान, वो लोग इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर डर गए, उनको ऐसे लगा ये वज्रपात है हमारे लिए, साक्षात मृत्यु है। तो उन्होंने बहुत ही आसानी के साथ चामर और मुष्टिक का वध किया। तो आज बलराम जयंती है, तो थोड़ा सा मनन करने का प्रयास करेंगे कि बलराम शब्द का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है बलराम शब्द का, क्या अर्थ है बलराम शब्द का, राम से बल, बलराम का क्या अर्थ है बताइए, कोई मुश्किल प्रश्न थोड़ी है। हाँ केवल बल और आध्यात्मिक आनंद देने वाला, तो फिर बल कहां से आ गया, बलराम का क्या अर्थ है, बलराम जी का क्या अर्थ है, श्री कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, बलराम जी का क्या अर्थ है, जब भगवान की सेवा में लगाए, और बताइए इसमें, बलराम दो शब्दों से बना है, बल और राम, बल का अर्थ है बल और राम का क्या अर्थ है, आनंद। यानी कि अगर हमें आनंद चाहिए तो हमें क्या, हमारे पास क्या होना चाहिए, बल होना चाहिए। अगर हम खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, बल होना चाहिए। बात बहुत लॉजिकल है, इस संसार में कमजोर व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है ना, तो इसलिए हम शक्ति लेना चाहते हैं। हम कौन सी शक्ति ढूंढते हैं, कौन सी पावर ढूंढते हैं? मनी पावर, मसल पावर, पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर। हम सोचते हैं ये अगर पावर, ये शक्ति हमारे पास आ जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। यही तो हम पूरे जीवन में प्रयास कर रहे हैं। आज पूरा संसार इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहा है, जात या धन, जात या यश, जात या शक्ति कमा ले, बल ले ले तो उससे मैं सुखी हो जाऊंगा। यही तो हमारी धारणा है कि नहीं है, बताइए। बचपन से ही बच्चों को ट्रेनिंग यही तो दी जाती है कि पढ़ लो, लिख लो, शक्तिशाली बनो, खूब धन कमाओ, जैसे आप सुखी रह सको। तो मनी पावर, मसल पावर, पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर, इसी से हमें सुरक्षित सुरक्षा का अनुभव होता है, अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं और सोचते हम सुखी रहेंगे। लेकिन हमारा अनुभव है कि ये सारी शक्तियां हमें आनंद नहीं दे सकते। अभी हाल ही में एक बहुत बड़े पॉप स्टार की मृत्यु हुई। क्या नाम था उसका? बच्चा बच्चा जानता है, इस ग्रह में तो, इस पृथ्वी ग्रह में तो सारे बच्चे जानते ही हैं, ब्रह्मांड में नहीं कह सकते। लेकिन वो इतना फेमस था कि सब लोग उसको जानते हैं, माइकल जैक्सन। और उसकी मृत्यु कैसे हुई आप जानते हैं? कोई हमें बता रहा था न्यूज़पेपर पढ़ के कि माइकल जैक्सन जैसे उस व्यक्ति ने 13 बारी अपना स्किन सर्जरी कराया, 13 बारी कॉस्मेटिक सर्जरी कराई। वो एक अफ्रीकन था, काले रंग का था, सर्जरी करा करा के उसने अपने आप को सफेद बना दिया, पूर्ण रूप से गंजा था। और जब उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया, उसके पेट में कुछ भी नहीं मिला, एक आधी गोली मिली खुली हुई, बस 5 फुट 10 इंच की उसकी हाइट थी। दिन में एक बारी भी मुश्किल से खा पाता था और बार बार अपने आप को इंजेक्शन लगवाता था, उसके कंधों पर, जांघों पर, पीठ पर इंजेक्शन के निशान थे, पसलियां टूटी हुई थी, खंजर था एकदम, और करोड़ रुपए का उसके ऊपर ऋण था। उसी ऋण को चुकाने के लिए एक नया एल्बम तैयार कर रहा था। अब नाचने की शक्ति कहां है, टूटा फूटा शरीर, तो शक्ति लाने के लिए इंजेक्शन लगवाता था अपने को एड्रेनलिन के। एड्रेनलिन वो ऐसा हार्मोन होता है जिसके अंदर बहुत उत्तेजना आ जाती है हमें, तभी वो स्टेज पर बहुत उत्तेजित होकर नाचता था, लोग सोचते थे कितना उत्साहित व्यक्ति है। तो एड्रेनलिन के इंजेक्शन लगवाता था, तो जब एड्रेनलिन के सारे इंजेक्शन लगवा रहा था, इतने इंजेक्शन लगवाए कि उसके सीधा हृदय में जो वाल्व होती है उसको पंचर कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी बुरी मृत्यु वो मरा व्यक्ति, जिसके पास उसके लाखों लाखों उसके फैन थे। ऐसे हम देखते हैं मोहम्मद अली को, जिसके पास इतनी मसल पावर थी, एक मुक्का मारता था सब बाहर। तो हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं हिज होलीनेस, अब जो कि अब नित्य लीला में प्रवेश कर चुके हैं, हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, वो उनको काउंसलिंग किया करते थे। तो एक बार वो सुबह सुबह उनके घर में गए, मोहम्मद अली के घर में। तो जैसे यहां पे 7:15 बजे भगवान अपने दर्शन देते हैं, दर्शन आरती होती है, तो लगभग यही समय था। तो उनको देखकर हैरानी हो गई कि मोहम्मद अली के बंगलों के बाहर हजारों लोग खड़े हैं उसके दर्शन करने के लिए सुबह सुबह। तो जब ये अंदर गए, उनको लगा कि मोहम्मद अली बड़े खुश होंगे, अभी आएंगे बाहर दर्शन देंगे। जब अंदर मोहम्मद अली से मिले तो गालियां निकाला था सब लोगों को, बाहर खड़े गंदी गंदी गालियां निकाला था सब आगे मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए, शांति से रहने नहीं देते। तो स्वामी जी ने पूछा क्यों इतना परेशान हो रहे हो? कह, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं स्लम में पैदा हुआ था, झुग्गी झोंपड़ी में, मैं सोचता था कब मैं मर्सिडीज में घूमूंगा, अब मेरे पास सारे जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मेरे पास पर्सनल एरोप्लेन हैं, लेकिन कोई आनंद नहीं है, वही सारे लोग पीछे पड़े रहते हैं, मेरे दुखी करते हैं मुझे। और तो व्यक्ति भी इतना दुखी है। तो चाहे हमारे पास मसल पावर हो, मनी पावर हो, ये हमें आनंद नहीं दे सकते। तो आज बलराम जयंती के दिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि बलराम शब्द का अर्थ क्या है। जिस आनंद की खोज में हम इतनी योनियों में, इतने ब्रह्मांडों में अनादि काल से भटक रहे हैं, वो आनंद किस शक्ति से प्राप्त होगा? ये निश्चित है, आनंद हम तभी प्राप्त पाएंगे जब हमारे पास कुछ शक्ति होगी। बिना शक्ति के हम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन वो शक्ति संसार की शक्तियां नहीं है। ये बात, बस यही बात समझ में आनी है कि आनंद पाने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, बल की आवश्यकता है। लेकिन वो बल इस संसार से प्राप्त नहीं होगा, वो बल प्राप्त होगा हमें आध्यात्मिक जगत से, और उस बल को देने वाले हैं बलराम जी। तो ये बात अगर हमें समझ में आ गई तो वास्तव में हम बलराम जयंती को समझ पाएंगे। बलराम जी ने इसीलिए अपना प्राकट्य किया है कि मुझसे बल लो, हमें किसी भी चीज की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण यहां पे 5000 वर्ष पूर्व आए, उन्होंने भगवत गीता का संदेश दिया। भगवत गीता का संदेश इतना शक्तिशाली है, वो जो शास्त्र है वो शस्त्र का काम करती है, वो शस्त्र हमारे इस बौद्धिक जगत से आसक्ति काट सकता है अगर हम सही ढंग से भगवत गीता को समझें। लेकिन हम लोग भगवत गीता को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती उसको अपने जीवन में उतार सकें। कितने लोगों को यह कमजोरी महसूस होती है? होती है कमजोरी महसूस की नहीं? घबराने की बात नहीं है, ना ही संकोच करने की बात है। हम सब लोग इस हृदय की कमजोरी से पीड़ित हैं। एक लाती है हृदय की कमजोरी, यह है हृदय का रोग, कि जानते बूझते हुए मालूम है क्या ठीक है क्या गलत है। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर ठीक करते हैं कि गलत करते हैं? गलत करते हैं अपने हृदय की कमजोरी के कारण। मालूम है भगवान कह रहे हैं मां शुचा डरो मत, मेरी शरण में आओ, बदले में सारे पाप हर लूंगा, विश्वास नहीं होता। हम एक झूठे सेल्समैन पे विश्वास हो जाएगा, झूठे सेल्समैन पे विश्वास कर लेंगे, पेट्रोल पंप में लिखा होगा ये मोबाइल आए डालो सुखी हो जाओगे, उस पर विश्वास कर लेंगे, धोखा खा लेंगे। लेकिन भगवान के इस वायदे पे हमें विश्वास नहीं होता कि मेरी शरण में तो आओ, सारे पाप हर लूंगा, डरो मत डरो मत डरो मत, भगवान कह रहे हैं, कह रहे सत्य बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। हाँ करके झूठ बोल देता हूं, इस बारी सच बोल रहा हूं अर्जुन, मैं तुम्हें ले जाऊंगा धाम में वापस, असली आनंद दूंगा, शरण में आ जाओ। हमें विश्वास नहीं होता, हिम्मत नहीं है, डरते हैं, मैं नहीं कैसे शरण प्राप्त करूं, क्या होगा परिवार का, क्या होगा बच्चों का, क्या होगा बिजनेस कौन संभालेगा, शरण लेने का मतलब सब कुछ छोड़ना है, तरह तरह के डाउट्स मन में आते हैं, तो फिर हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। जानते बूझते हुए प्रवचन सुनते हैं, ठीक बात बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस संसार में दुखी दुख है, सब लोग धोखा देते हैं, कोई असली नहीं है, सब नकली है, असली बात तो यही है। लेकिन कैसे नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल होने का मतलब दुखी रहना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकली नहीं है सुखी रहना। अगर हम भक्ति को प्रैक्टिकल नहीं समझते हैं, इसका मतलब यह है कि सुखी रहना प्रैक्टिकली नहीं है, तो मान जाओ दुखी रहेंगे। तो हम लोगों को अगर सुखी रहना है, आनंद में रहना है, तो शक्ति की आवश्यकता है, बल की आवश्यकता है। भगवान कभी अपने वायदे को तोड़ेंगे नहीं, हमेशा पूरा करेंगे, निश्चित रूप से हर परिस्थिति में हमारी वो रक्षा करेंगे, ये विश्वास दृढ़ होना चाहिए। रक्षति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। ब्रजवासियों पे तरह तरह के संकट आए, वो घबराए नहीं, हमेशा कृष्ण को पुकारा, बलराम को पुकारा। हमारे ऊपर भी जब संकट आए तो घबराए नहीं, कृष्ण और बलराम की शरण में जाएं। हमारे ऊपर जब संकट आते हैं तो हम सोचते हैं ये क्या परिणाम मिल रहा मुझे भक्ति का, ये है भक्ति का फल, छोड़ दो भक्ति, अपना कुछ और जुगाड़ ढूंढो, कैसे संकट को मैं मैनेज करूं। तो इस ढंग से हम आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें अगर आनंद चाहिए तो शक्ति चाहिए, बल चाहिए, हृदय की कमजोरी को दूर करना होगा, और वो बल हमें प्राप्त होगा श्री बलराम जी से। तो कोई बल कैसे मिलेगा, कैसे प्रार्थना करेंगे, कैसे वो बल करके हृदय में प्रवेश करेगा, क्या विधि है कि इस बल को हम प्राप्त कर सकें, क्या विधि है बल प्राप्त करने के, क्या एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कितने वजन उठाने पड़ेंगे जिससे हमारी मसल्स बनेंगे और हम खुश हो जाएंगे, आध्यात्मिक मसल्स, स्पिरिचुअल मसल्स कैसे बनेंगे, कोई आइडिया दे सकता है कैसे बलराम जी से हम शक्ति प्राप्त कर पाएंगे? आज बहुत सुंदर दिन है, बलराम जयंती जी का दिन है, आज हम भगवान बलराम से प्रार्थना करेंगे, हमारे सारे हृदय की कमजोरियां दूर हो सकती हैं। प्रार्थना तो करें, इस मंदिर में स्टेज पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी बैठे हैं, जो अर्च विग्रह होते हैं ये साक्षात भगवान है, और अर्च विग्रह की एक नेचर होती है, प्रकृति होती है। क्या नेचर है इनकी, इनकी नेचर है, इनका स्वभाव है कि ये सबको आशीर्वाद देना चाहते हैं, ये सबको आशीर्वाद बांटते हैं। भाई हम लोग इतने बुद्धू हैं, इतने पागल हैं, इतने जिद्दी हैं, भगवान से आशीर्वाद ही नहीं मांगते। सही ढंग से हृदय से आशीर्वाद मांगे निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से गारंटेड मिलेगा, हम हृदय से मांगते ही नहीं। तो आज बलराम जी जयंती है, आज उनका जन्मदिन है, आज तो और ज्यादा कृपालु हैं, हम मांग के तो देखें क्या आशीर्वाद चाहिए, गारंटेड मिल जाएगा। तो अपने अगर हृदय की कमजोरी को दूर करना है तो आज बलराम जी की शरण में जाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि बल कैसे प्राप्त होगा बलराम जी से, क्योंकि आनंद प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता है, आनंद प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता है, बल की। कौन सा बल? आध्यात्मिक बल, ये भौतिक बल नहीं। इसके लिए अपनी चिंताएं मत करें। आजकल छोटे छोटे बच्चों को, बेचारे 2.5 साल 3 साल के बच्चे होते हैं, उन पर इतना प्रेशर डाला जाता है, माता पिता को चिंता हो जाती है इसका भविष्य क्या है, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, कहीं बिजनेस नहीं कर पाएगा बेचारा, दुखी रहेगा, उस पर प्रेशर डालते हैं। 3 साल के बच्चे को कंप्यूटर सिखा देते हैं। प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे थे, कुमारा माचरत धर्मन भगवतान ही दुर्लभम मानुषम जनता, कि 5 साल की आयु से भागवतम धर्म शुरू करो। लेकिन आज के माता पिता और स्मार्ट हैं, 3 साल की आयु से ही धर्म शुरू कर देते हैं, धर्म नहीं अधर्म, कंप्यूटर सिखाना शुरू कर देते हैं। 2.5 साल का छोटा बच्चा अपनी मम्मी के साथ संडे को स्कूल जा रहा था। मैंने पूछा क्या कहाँ जा रहे हो, बोले स्कूल। मैं कहा संडे को स्कूल, कहता है हाँ एक्स्ट्रा क्लास है। अरे 2.5 साल का बच्चा संडे को एक्स्ट्रा क्लास में, क्या हो गया? उसकी माँ बोली अगले हफ्ते इसके डीपीएस में इंटरव्यू है, उसकी तैयारी करवा रहे हैं। मैं आपको जा रहे हो? बोले मेरी भी एक्स्ट्रा क्लास है, मेरा भी इंटरव्यू होगा। इतना प्रेशर, आप देखिए कितना प्रेशर है। और इस संसार के सुख को प्राप्त करने के लिए कितने दुखों को झेलना पड़ता है, कितनी कठिनाइयां, कितना संघर्ष करने के बाद हम जो चाहते हैं वो कभी कभी मिल जाता है। और जब मिलता भी है क्या हमें सुख देता है? कभी नहीं देता, कभी नहीं देता। तो फिर इतना संघर्ष क्यों करें? क्यों ना अपने हृदय की कमजोरी को दूर करें और बलराम जी से शक्ति मांगे। बलराम जी के पास शक्ति सीमित नहीं है, असीमित शक्ति है, असीमित। सबको देंगे, जितनी चाहोगे उतनी मिलेगी। तो शक्ति को मांगने का तरीका क्या है? वो है कि बलराम जी के जो प्रतिनिधि हैं वो हैं गुरु, उनकी हम शरण में जाएं। जब प्रमाणिक गुरु की हम शरण ग्रहण करते हैं तब हमें आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। और प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करने का अर्थ ये है कि हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को, उनके आदेशों को बहुत गंभीरता से लें। उनकी इंस्ट्रक्शंस, उनके आदेश अपने जीवन में उतारने के लिए होते हैं, केवल सुनने मात्र के लिए नहीं होते। तो जब हम भक्तों से भगवत गीता का संदेश सुनते हैं तो पूरे हृदय से उसको सुनना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। प्रयासों में जब कमी पड़े, कमजोरी लगे, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे शक्ति दे कि मैं इस पद से वापस ना जाऊं, मैं आगे बढ़ता रहूं। ये एक संघर्ष है, माया के विरुद्ध चलना है। भक्ति करने का अर्थ है कि फ्लोइंग अगेंस्ट द करंट, नदी में जो प्रवाह होता है उसके विरुद्ध चलना है। तो ज्यादा शक्ति चाहिए, तो ये शक्ति मिलेगी बलराम जी से। तो उसके लिए हमें प्रार्थना कर रही है, और वो सबसे सुंदर प्रार्थना क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब बहुत ही सिंसियर और गंभीर भक्त हैं, तो आप सब भक्तों से निवेदन है कि आज बलराम जी से प्रार्थना कीजिए कि मैं सही ढंग से प्रार्थना कर पाऊं, यानी कि सही ढंग से मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर पाऊं। गुरु के सारे आदेशों में से सबसे महत्वपूर्ण आदेश ये है कि 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करना। तो अगर आप में से कुछ भक्त लोग अभी 16 माला का जप नहीं करते, या कुछ भक्त लोग बिल्कुल जप नहीं करते, जो लोग बिल्कुल जप नहीं करते उनको प्रयास करना चाहिए आज से वो बलराम जी से प्रार्थना करके जप प्रारंभ करें। जो 16 माला का जप नहीं करते वो प्रयास करें धीरे धीरे 16 माला पे आए। जो 16 माला का जप करते हैं उनको माला की क्वालिटी और बढ़ानी चाहिए, और अच्छे ध्यान पूर्वक ढंग से करना चाहिए। तो अच्छे ढंग से हम रो रो कर भगवान को पुकारें, क्यों नहीं सुनेंगे भगवान? भगवान हमारी सुनने के लिए ही बैठे हैं, हम उनको पुकारते नहीं हैं। तो हम भगवान को हृदय से पुकारें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करें। जब हम ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करेंगे, आप देखना आपको कितनी शक्ति का अनुभव होगा। ऐसी शक्ति मिलेगी कि आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा। जब हमारे पास शक्ति होती है तो हम कुछ भी सहन कर सकते हैं, जब हमारा हृदय कमजोर होता है तो थोड़ी सी बात पर हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। ये अगर हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी झगड़ा मोल ले लेते हैं, इसका मतलब क्या है? कमजोरी है, हृदय की कमजोरी है, आध्यात्मिक शक्ति की कमी है। इसका मतलब ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक जप करें, ध्यानपूर्वक शास्त्रों को पढ़ें। भगवान ने अपनी वाणी दी है हमारे लिए, हम लोग शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं। जब हम शास्त्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तब हमें मालूम चलेगा कि भगवान कितने कृपालु हैं, कितने कृपालु हैं भगवान। अगर भगवान ने ये शास्त्र हमें ना दिए होते तो हमें कौन गाइड करता? कैसे मालूम चलता कि गुरु की क्या महिमा है, भक्तों की क्या महिमा है, भक्ति की क्या महिमा है, इस संसार की वास्तविक प्रकृति क्या है? माया और मुग्ध जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। माया के चक्कर में पड़े जीव को तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन उस पर कृपा करके ही वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथों का संकलन किया है। तो कृपया करके आज बलराम जयंती के अवसर पर हम बलराम जी से प्रार्थना करें कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम ध्यानपूर्वक जप कर सकें, ध्यानपूर्वक हम शास्त्रों का अध्ययन कर सकें और अच्छे ढंग से भक्तों की हम सेवा कर सकें। अगर हम ये प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद सारे प्राप्त होंगे। जब ये आशीर्वाद प्राप्त होंगे तो हमें बल मिलेगा, जब बल मिलेगा तो हम आनंद में रहेंगे, और जब ये बल की कमी रहेगी तो कृष्ण बलराम यहाँ पे उपस्थित हैं फिर भी हम कमजोर रहें तो क्या लाभ हुआ? हमारे मंदिर में कृष्ण बलराम भी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी हैं, तो चारों तरफ से शक्ति ही शक्ति, आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन हम लोग मांगते ही नहीं है। अहंकार वश नहीं चाहिए, अभी जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत बैंक बैलेंस है, मेरे पास मेरे चार भाई खड़े हैं पीछे मेरी रक्षा करने के लिए, मेरा बेटा भी इंजीनियर बनने वाला है, मेरा बेटा आईटी पावर, आपको मालूम नहीं आईटी में कितनी पावर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डॉलर भेजेगा वहां से, बहुत शक्तियां मेरे पास, अभी नहीं अभी नहीं, मैं कितना सुंदर हूं, कितनी अच्छी हूं, क्या सब कुछ तो है मेरे पास, क्या मांगने की आवश्यकता है? तो हम लोग इसी भ्रम में रहते हैं, लेकिन ये सब धोखा है। असली शरण श्री कृष्ण की है और बलराम जी की है। बलराम जी की शरण हम ग्रहण करें, ध्यानपूर्वक जप करें, ध्यानपूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करें, ध्यानपूर्वक भक्तों का संग करें, उनकी सेवा करें, तो निश्चित रूप से शक्ति का संचार हमारे में होगा और बड़ी जल्दी हम श्री कृष्ण की शरण प्राप्त कर लेंगे। श्री प्रभुपाद बताते हैं भगवान श्री कृष्ण के जो निर्देश हैं वो शस्त्र के समान है, उस शस्त्र को उठाने के लिए शक्ति चाहिए। अगर आप हैदराबाद में गए होंगे नेशनल म्यूजियम में, वहां पे 500 साल पुरानी एक तलवार पड़ी है जो कि टीपू सुल्तान ने चलाई थी, बहुत लंबी चौड़ी तलवार है, उसको एक व्यक्ति आज का व्यक्ति उठा ही नहीं सकता। उसको उठाने के लिए, तलवार चलाने के लिए और उठाने के लिए बड़ी शक्ति चाहिए। इसी ढंग से भगवद गीता का जो ज्ञान है बहुत बढ़िया शस्त्र है, इसी शस्त्र से हम इस भौतिक संसार से अपनी आसक्ति को काट सकते हैं, लेकिन इस शस्त्र को उठाकर और इसको चलाने के लिए खूब शक्ति चाहिए, और ये शक्ति प्राप्त होगी बलराम जी से, और बलराम जी के शक्ति का प्रभाव होता है प्रमाणिक गुरु और उनके प्रतिनिधियों से, जो कि हमें संदेश देते हैं कि ध्यानपूर्वक जप करें, ध्यानपूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करें और भक्तों की सेवा करें, बस फिर हमारे में शक्ति का संचार होगा और फिर हम अपने जीवन में रमनते योगिना रमनते अनंता, जो योगी लोग होते हैं वो अनंत आनंद की प्राप्ति करते हैं। इस संसार का छोटा मोटा आनंद नहीं, अनंत अनंत आनंद की हमें प्राप्ति होगी। तो ये आज बलराम जी से हम ये प्रार्थना करते हैं। बलराम जी की, बलराम जयंती महामहोत्सव की, दाऊ जी की, कृष्ण बलराम की, आज के आनंद की, निताय गो प्रेम आनंद। आप सब अपनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।